ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुःवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम आप सबको स्वागत करते हैं ये कृष्ण रसायनम के आज खास सत्र में, जिसमें हम तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत धाम की वर्णन, उस अध्याय के संबंध में आज चर्चा करेंगे। इसके पिछले सत्रों में आप में से अनेक भक्त लोग आए थे, उसमें परीक्षित महाराज की विरक्ति, उन्होंने कैसे अपने राज्य को त्याग कर गंगा के तट में जाकर ऋषि मुनियों को मिलकर उनसे आध्यात्मिक तत्व जिज्ञासा की, एक साधारण इंसान का धर्म क्या है, और जो मृत्यु के निकट पहुंच गया है कोई व्यक्ति उसका धर्म क्या है, और क्या हमें गुणगान करना चाहिए, पहले तो क्या सुनना चाहिए, क्या विषय किस विषय को हमें गुणगान करना चाहिए, किस विषय को स्मरण करना चाहिए, और उन्होंने ये भी पूछा किस विषय के बारे में सुनना नहीं चाहिए, किसके गुणगान भी नहीं करना चाहिए और किस विषय की स्मरण नहीं करना चाहिए। ये चार प्रश्न पूछा उन्होंने। तो इन प्रश्नों के जवाब के रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम उन्होंने बोला क्या नहीं करना चाहिए, बोल दिया उन्होंने, निषेध बोल दिया पहले। उन्होंने बोला कि जो लोग दुनियादारी कथाओं में फंसे हैं, वो लोग इस दुनिया में समय काटकर अपने मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं, हम उन लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इस दुनिया में तो वैसे अनेक प्राणियां घूम रहे हैं, जैसे जलचर हैं जो पानी में रहते हैं, पंछियां हैं जो बाकी प्राणी हैं, ये प्राणी सब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही जीते हैं, अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। और लेकिन मनुष्य जीवन में एक इंसान सोच सकता है कि अगले गंतव्य स्थान क्या है मेरे। एक बार परम पूज्य गिरिराज महाराज ने बोला कि एक बार कुंभ मेला के समय उनको कुछ रिक्शा में जाना था, उनको एक रिक्शा वाला का रिक्शा खड़ा था उधर, तो महाराज ने पूछा कि ये रिक्शा किसका है, वो आदमी बोला मेरा ही है। महाराज पूछे कि इधर जा सकता है क्या, आप आओगे, वो बोला आज नहीं, आज तो कुंभ है, उधर जाकर नहाना है हमको, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मैं जा रहा हूँ उसके लिए परिवार के साथ, हम आज बिजनेस बंद कर दिया। तो महाराज बोले चाहे तो तुमको 3 गुना दे दूंगा पैसा, वो बोला 30 गुना भी दीजिए मैं नहीं आऊंगा। वो बोला कि ये मौका जो है, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, कुंभ में जो अमृत गिरता है उसमें नहाकर हम पवित्र बनना चाहते हैं, पैसा तो आता है खत्म हो जाता है, ऐसे कभी तबीयत अच्छा रहता है कभी बिगड़ जाता है। इस दुनिया में हम लोग एक शरीर प्राप्त होता है, एक शरीर निकल जाता है, लेकिन अगर हम अमृतत्व को पाएंगे, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्यवरा निबोधता, ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि हे मनुष्य जग जाओ, उठ जाओ और ये मानव शरीर की भेंट जो तुमको प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करो, समय की सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। तो वो व्यक्ति बोल रहा था कि इसलिए मैं जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ, काम धंधा तो रोज ही करते हैं, ऐसे बोला उसने। महाराज को इतना महाराज खुश हो गए, अनेक प्रवचनों में महाराज इसके बारे में बोला, उन्होंने बोला कि ये पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है लेकिन इसको सही चीज मालूम है, इसको पकड़ लिया उसने क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या करना चाहिए। तो इस तरह परीक्षित बहुत गंभीरता के साथ गंगा के तट में जाकर बैठकर सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंदों से कथा के श्रवण की। उन्होंने बोला कि तुम कुछ संग को त्यागो, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यताम। एक व्यक्ति को त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों की संग को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भज साधु समागमम, ऐसे सभा में आना चाहिए जिधर भगवान के भक्त लोग इकट्ठित होकर उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनकी लीला स्मरण करते हैं। और कुरु पुण्य महोरात्रम, दिन रात भक्ति सुकृति को हासिल करना चाहिए। कैसे? भगवान के दर्शन करके, भगवान को सर झुक कर, भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम लेकर, भगवान की गीता पढ़कर, भागवत पढ़कर, विभिन्न तरह की सेवाओं में जुड़कर हम सुकृति को बढ़ाना चाहिए। सुकृति एकमात्र खजाना है हमारे खजाने में, जो ऐसे एक पैसा है जो हमारे साथ जाने वाले पैसा है। हमारे परम पूज्य नवगिंद्र महाराज अक्सर बोलते थे, इधर जब भी आते थे बोलते थे, भक्ति भगवान के कर ले खजाना, नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, ऐसे बोलते थे। तुम्हारे खजाना को भरना हो तो तुम भक्ति सुकृति से भरो उसको, बाकी सब निकल जाएगा। तो यही बात है, सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया, तुम भगवान के बारे में श्रवण करो, उसकी कीर्तन करो, उसका स्मरण करो और करके तुम पवित्र बन जाओगे, तुमको मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकेगा, मृत्यु आने के पहले तुम भगवत धाम लौट जाओगे। इतना ही नहीं, तुमसे देवता भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। क्यों? इंद्र हमेशा डरता है विश्वामित्र से, उसको लगता है कि विश्वामित्र मेरे साथ स्पर्धा करके मेरे पदवी को उठा लेंगे, हमको उड़ा देंगे, ऐसे उसको डर होता है। लेकिन परीक्षित जब भागवत कथा का श्रवण किया, उनको देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे उसके ऊपर वो 7 दिन में, जब वो भगवतधाम लौटने वाला था, क्योंकि उनको लगा कि ये तो हमारे साथ स्पर्धा नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे से भी ऊपर जाने वाले हैं, भगवतधाम लौटने वाले हैं, तो ये तो शुद्ध बन गए हैं। इसलिए देवता लोग भी भक्तों के साथ मैत्री जोड़ते हैं। आप लोग जानते हो ये जो अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ किससे, शिवजी से, और इंद्र जो है इंद्र लोक में अर्जुन जो उनके भी बेटा है उनको अपने साथ अपने सिंहासन में बिठा दिया। शायद इंद्र इस दुनिया में अर्जुन को छोड़कर किसी और को बैठने का स्थान नहीं देता होगा, है ना, वो तो डरता है कोई इधर बैठ जाएगा करके, लेकिन उन अपने ही बेटे को उनको बिठा दिया। मतलब क्या है, देवता लोग भक्त लोगों को प्रेम करते हैं, उनको सब तरह के जरूरतों को प्रदान करते हैं जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सके, वो भगवत धाम लौट सके। वो ये उदाहरण मैंने आपको क्यों बोला, पहले स्कंद के दूसरे श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक, सेकंड श्लोक ऑफ भागवतम, उसमें बताया गया कि भगवत धाम ऐसे एक दुनिया है जिधर स्पर्धा नहीं है, लेकिन ये भौतिक धाम में बड़ा स्पर्धा है। इधर आप देख सकते हैं, ये एक मक्खी को एक मेंढक काता है, एक मेंढक को एक सर्प काता है, एक सर्प को एक चील काता है, चील को कोई शिकारी उड़ा देता है, कभी कभी एक शिकारी को भी बाघ शेर कोई मार देता है। इस तरह आप देखते हैं इस दुनिया में हर एक प्राणी के पीछे कोई ना कोई तो पड़े हैं, हा? इस दुनिया में स्पर्धा का दुनिया। इतना ही नहीं, छोटे सर्पों को बड़े सर्प कहते हैं, छोटे मछलियों को बड़े मछली कहते हैं, छोटे दुकानदारों को बड़े शॉपिंग मॉल कह लेते हैं, है ना, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल खोलते हैं छोटे बिजनेस वालों को उड़ा देते हैं वो लोग बंद करके निकल जाते हैं ऐसे। इस तरह इस दुनिया में बड़ा स्पर्धा का दुनिया है, हम लोग भी जानते हैं। तो अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू लगता है, इंटरव्यू में 10 लोग को चुनने वाले हैं लेकिन 1000 लोग आते हैं इंटरव्यू में, बड़ा स्पर्धा का दुनिया है। ये एवरेज लोगों के लिए नौकरी मिलना बहुत कठिन है आजकल, है? तो इस स्पर्धात्मक दुनिया में इंसान को जीना भी कठिन है। और सब लोगों का मनोवृत्ति क्या होता है इस दुनिया में, सिर्फ जियो, जियो जीने दो, ये नहीं। भागवत में बताया गया कि भगवत धाम ऐसे एक स्थान है जिधर सब लोग जीते भी हैं, दूसरों को जीने भी देते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, ये सृष्टि का नियम है कि हम खुद भी जीना चाहिए, दूसरों को जीने देना चाहिए। लेकिन जो लोग स्वार्थी हैं वो बाकी परजीवों के बारे में सोचते नहीं, परजीवों को क्लेश देते हुए उनके सर के ऊपर भी चढ़ जाते हैं अपने विजय प्राप्त करने के लिए। सो इस दुनिया में इस तरह से स्पर्धा होने के कारण, झगड़ा होने के कारण, ईर्ष्या होने के कारण, एक पुरुष दूसरे पुरुष के बीच में झगड़ा है, परिवार परिवार के बीच में झगड़ा है, और कभी एक देश और दूसरे देश के बीच में झगड़ा है, किसी जाति एक जाति दूसरे जाति के बीच में झगड़ा है इस दुनिया में। तो हम इस तरह के दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उनको बोला कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चता भयम्। हे परीक्षित, भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हरि उनकी कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तुम सब तरह के भय से मुक्त हो जाओगे और तुम भगवत नाम लौट जाओगे, वो ही जीवन का लक्ष्य है। तो परीक्षित खुद ही एक उदाहरण बना, भागवत का श्रवण करके भगवत नाम प्राप्त की परीक्षित ने आसानी से 7 ही दिन में। तो हमने सोचा कि इस सत्र में हम उस भगवत धाम की कुछ वर्णन करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले परीक्षित की कथा 3-4 अध्याय में सुना है, लेकिन इधर जो वर्णन आ रहा है भगवान के धाम की वर्णन, इसको सुनने से हमारे अंदर एक आध्यात्मिक लोभ जागृत हो जाएगा कि ये भगवत धाम को हमें प्राप्त करना ही है, किसी भी अवस्था में हमको छोड़ना नहीं है। इसलिए भागवत में इसका वर्णन दिया गया है। आप देखेंगे इस दुनिया में इंसान अपने समस्याओं का समाधान चाहता है लेकिन भगवत धाम नहीं लौटना चाहता है। लोग मंदिर में भी आते हैं, लोगों को साधु संतों को मिलते हैं, अनेक लोग सोचते हैं कि अभी एक समस्या है हमारे जीवन में, उसको समाधान दे देंगे आप, बस हमको आगे कुछ नहीं है बस। और आगे कब आएंगे? जब दूसरा समस्या आएगा तब आएंगे। ऐसे लोग सोचते हैं, लोगों का सोचना ऐसे होता है, एक एक समस्या को अलग करके वो लोग समस्या को सुलझाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस शरीर में हम लोग आत्मा के रूप में बैठे हैं, अगर आप गहराई से देखेंगे, ये शरीर ही अनेक क्लेशों का कारण है। आप देखेंगे हरेक शरीर के अवयव के लिए एक एक डॉक्टर है। आंख के लिए ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, दांत के लिए डेंटिस्ट है, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, जैसे हमारे हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिशियन है ना, ऐसे ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट है। एक बार मैंने विद्यार्थियों को 25-30 अलग अलग अवयव बताया शरीर में, और सब लोगों को पूछा कि इसके लिए डॉक्टर कौन है, सब लोगों ने नाम निकाल दिया, बोला ये इसके लिए ये डॉक्टर है, इसके लिए ये डॉक्टर है। इससे क्या पता चलता है? इससे हमारे शरीर के कुछ भी अवयव हमको दुख दे सकता है, नहीं तो डॉक्टर क्यों बैठा है ना? डॉक्टर इसलिए तो है क्योंकि उनको बिजनेस मिलता है ना, किसने किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को हड्डी टूट गया है, ऐसे अलग अलग समस्याओं से लोग आते हैं। तो ये भौतिक दुनिया में शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय में 8 से 12 श्लोकों में एक स्थान में बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। हे अर्जुन, इस दुनिया में जन्म और मृत्यु होता है जीव को, और व्याधि और बुढ़ापा होता है। इसको देखकर इंसान को जग जाना चाहिए कि मैं इस तरह के दुखों के बीच में नहीं जीना चाहता हूं, मैं इन दुखों से ऊपर उठकर मुक्त होकर हम भगवत धाम लौटने की हमें इच्छा है, इस तरह की इच्छा पैदा होना चाहिए। ऐसे भगवान बताते हैं भगवत के 13वें अध्याय में। जो इंसान अपने खाने पीने में खाओ पियो मजा करो इसमें डूबे रहते हैं, वो लगभग जानवर के प्रवृत्ति ही है उनमें, ज्यादा वो लोग सोचते नहीं है आगे के बारे में। आगे के बारे में सोचने वाला मनुष्य होता है। देखिए एरोप्लेन एरोड्रोम में आप देखते हो, जो एरोप्लेन जो है वो भी जमीन में, ये रनवे बोलते हैं ना, रनवे में चलता है। वैसे तो कार भी रोड में चलता है, फर्क क्या है? दोनों ऐसे ही जाते हैं लेकिन एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन कार ऐसे चलता रहता है, कार कभी उड़ता नहीं। इस तरह जानवर ऐसे ग्राउंड लेवल में रहते हैं हमेशा, वो ज्यादा सोचते नहीं खाने पीने को छोड़कर। लेकिन इंसान जो है वो भी खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, अपने आप को सुरक्षित रखता है, सब करता है, लेकिन साथ साथ ऊपर उठने की तकनीक उसको मालूम है। मनुष्य अगर शास्त्र पढ़कर दिव्य जीवन को अपनाकर वो भगवत धाम लौट सकता है, इसके लिए उसके अंदर क्षमता है। लेकिन देखा जाता है इस दुनिया में लोगों में रुचि ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि बद्धावस्था में लोग ज्यादातर अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। मेरा शरीर, शरीर की तृप्ति, तर्पण, इंद्रिय तर्पण, उसमें लगे रहते हैं लोग। एक एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ा धुआं छा गया, धुआं ही नहीं था, वो बहुत गरम गरम धुआं था। वो सब देवता अपने अपने लोग छोड़कर अपने एरोप्लेन में उड़ने लगे, उड़ते हुए ब्रह्मा के पास आ पहुंचे। सबको जैसे आजकल सुबह सुबह ठंडी हवा बज रही है, ऐसे इस तरह ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म हवा बहती है, आप देख सकते हैं, कभी ऐसे आग जैसे हवा बहती है ऐसे। तो उनको भी आग जैसे धुआं फैलने लगा, तो उनको बहुत तकलीफ हुआ। सब देवता लोग आ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, आकर बोले कि पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ इधर, लेकिन हम लोग तड़प रहे हैं इस तरह के गर्मी में, पता नहीं क्यों सारे ब्रह्मांड में इतना धुआं छा गया। तो ब्रह्मा जी ने उन सब को बिठा कर बोला, अभी मैं प्रवचन दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनोगे, उस प्रवचन के बाद मैं आपको पता करूंगा कि धुआं क्यों आया। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम आए हैं कुछ सुरक्षा के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी बिठा कर उनको क्लास दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है इन लोगों को सही चीज को सुना देंगे इनको अभी। ये सुनाने से लोगों को इतना लाभ हो जाएगा। अभी तो एक धुआं आया है इस दुनिया में, अभी ये तकलीफ, ये तो एक तकलीफ हो गया, ऐसे तो अनेक तकलीफ है इस दुनिया में, लेकिन अगर मैं ऐसे उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे ये लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से उठकर अपने भगवत धाम, भगवान के धाम लौट सकते हैं, इस बात को मन में रखते हुए ब्रह्मा जी ने ये अध्याय को बताया, उनको देवताओं को बताया। इस अध्याय में जो भी ब्रह्मा जी के श्लोक हैं, तो ब्रह्मा जी इस तरह अलग अलग विषयों के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी। बहुत सुंदर वर्णन है, इसको पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि वो ये दुनिया में जिधर रहते हैं हम, ये किस तरह का दुनिया है, वो किस तरह का दुनिया है। बहुत सुंदर भव्य वर्णन है इस अध्याय में। तो इसमें से इसके पहले दूसरे स्कंद में भी ब्रह्मा जी को एक दर्शन प्राप्त हुआ। एक मिनट है, ब्रह्मा को पहले एक वैकुंठ का दर्शन भगवान ने दिखाया, उधर से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं तो दो चार श्लोक को। भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, एकदम सुंदर वर्णन है उधर वैकुंठ का। उसके बाद ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान को, प्रश्न पूछते हैं, चार प्रश्न पूछते हैं उस समय। हाँ, ब्रह्मा दर्शन ऑफ महावैकुंठा, ये 299 दूसरे स्कंद के नौवा अध्याय नौवा श्लोक। बहुत आसान है याद रखने के लिए, 2.9.9 करेक्ट। आपको श्लोक दिखाएंगे आपको। उधर भी जो वर्णन दिया है और इधर जो वर्णन, दोनों में दोनों मिलजुलता है, आप देख सकते हैं। इधर आ गया, इधर इधर आ गया श्लोक। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परम नत यत् परम। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम् स्वदृष्ट्वद्भिर् पुरुषैर् अविष्टुतम्। हिंदी में भी है क्या उधर? 2.9.9 है उधर? नॉट देयर। ओके, कोई इधर अनुवाद पर पढ़ सकता है इसका अनुवाद? यू कैन ट्रांसलेट एंड से व्हाट इट इज। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के तपस्या से, और संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ का दर्शन दिलाया उनको, जो सब ब्रह्मांडों से परे हैं, पर व्योम में है। और ये जो दिव्य जगत है, वो जगत को अनेक मुक्त पुरुष हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, जो सब तरह के भौतिक क्लेशों से ऊपर उठ गए हैं और सब तरह के माया की, माया से उत्पन्न होने वाले शोक मोह भय इत्यादि से वो ऊपर उठ गए हैं। ऐसे ऊपर उठे हुए, पहुंचे हुए महात्मा लोग इस वैकुंठ की वर्णन, वैकुंठ की गुणगान करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिलाते हैं। क्या देखा ब्रह्मा जी ने उधर, आप खुद सुन लीजिए। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। देखिए इधर बताया गया है प्रवर्तते यत्र रजह तमह तयोः न, ऐसा बताया गया। इसका मतलब है उधर रजोगुण तमोगुण के प्रभाव नहीं रहा उधर। इतना ही नहीं सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम, उधर ऐसा एक सत्व गुण है जो इस दुनिया के सत्व गुण के बराबर नहीं है, उससे भी बढ़कर है। इस दुनिया में क्या होता है, रजोगुण में काम क्रोध लोभ इत्यादि होता है, तमोगुण में आलसीपन और ज्यादा नींद और सब तरह के बुरे व्यवहार इत्यादि होता है। लेकिन सत्वगुण में सुखम और ज्ञानम बताया गया है। लेकिन सुख के कारण इंसान इस दुनिया में ढीला पड़ जाता है और ज्ञान के कारण गर्वित हो जाता है, इसलिए इस दुनिया में सत्वगुण में भी रजोगुण तमोगुण का मिश्रण आ जाता है, इस दुनिया में मिलावट आ जाता है। कभी कभी आप देखते हो ग्रोसरी के दुकान में एकदम प्रसिद्ध हो जाता है एक दुकान, वो कुछ मिलावट के बिना बेचते हैं सब, लेकिन दुकान जब मशहूर हो जाता है उसके बाद भीड़ भाड़ बढ़ जाता है, कभी कभी मिलावट चालू हो जाता है उधर। इस तरह इस दुनिया में सत्वगुणी लोग भी कभी जैसे अजामिलता सत्वगुणी था लेकिन रजोगुण का मिश्रण आ गया उनके जीवन में, ऐसे देखा जाता है। सत्वंच मिश्रम ऐसे बताया गया है। लेकिन उस दुनिया के बारे में इधर बताते हैं, रीड दिस।
भगवान के इस श्लोक में जो भौतिक तमोगुण और रजोगुण है वो वहां नहीं है, और वहां पे
सत्वगुण
सत्वगुण का भी नहीं, कोई सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं है।
उसका मतलब क्या, उधर विशुद्ध सत्व है ना? विशुद्ध सत्व का मतलब तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों भौतिक लोक में होता है, लेकिन उधर विशुद्ध सत्व होता है। विशुद्ध सत्व का मतलब क्या है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड आप सोने जानते हैं ना, अगर आपके पास 24 कैरेट सोना हो, अगर कोई बोलता है आपको कि 24 कैरेट सोना है, एक बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे उसको, कैसे 24 कैरेट गोल्ड में आप किसी भी तरह का ऑर्नामेंट नहीं कर पाओगे आप, इतना मुलायम इतना सॉफ्ट होता है। अगर कुछ ऑर्नामेंट बनाना हो आपको, आभूषण बनाना हो, तो उसमें कुछ मिश्रण की जरूरत है, देन यू ऐड इट विथ गुडनेस पैशन इग्नोरेंस। तो विशुद्ध सत्व इतना मुलायम होता है, इस तरह भगवत धाम में सिर्फ विशुद्ध सत्व होता है।
वहां पे काल का भी कोई प्रभाव नहीं है, तो वहां माया का क्या कहना, वो तो उस जगत में प्रवेश ही नहीं कर सकती है। बिना किसी झिझक के देव और दानव ऐसे भगवान की ऐसे पूजा करते हैं वहां।
हाँ करेक्ट, अगर भगवत नाम में कुछ दानव हो, वो दानव भी भगवान की खुशी के लिए ही लीला रचाते हैं उधर उनकी इच्छा अनुसार। जैसे गोलोक वृंदावन में क्या अगासुर बकासुर इत्यादि है क्या, कोई कोई कुछ लोग पूछते हैं पूतना भी आती है क्या उधर, पूतना उधर है तो वो तो दात्री के रूप में है, एक राक्षसी के रूप में नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया है कि गोलोक में भी कभी असुरों की आवाज आता है, क्यों, उस आवाज को सुनकर गोपाल कृष्ण के साथ और कुछ अच्छा लीला होता है उनका, लेकिन असुर कोई नहीं है उधर भगवत धाम में, ऐसे गोलोक वृंदावन में। प्रभु जी बता रहे हैं कैसे भौतिक ब्रह्मांड के ऊपर भगवत धाम है, उसके वर्णन कर रहे हैं उनके तात्पर्य में। ये बता रहे हैं जीव गोस्वामी, उधर भौतिक उधर भगवत धाम में वैकुंठ का एक ऐसे माहौल है जिधर सबके पास दिव्य गुण है। उधर भगवान विष्णु के पास तो जरूर है, लेकिन बाकी भी वैकुंठ वासियों में अनेक दिव्य गुण है। ये दिव्य गुण के साथ साथ जब भक्ति में सेवा में वो लोग जुड़ते हैं, वो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से ऊपर उठकर वो लोग जीते हैं, और साधारण पुरुष उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो विराज के ऊपर है। इसका मतलब किसी भी तरह का रजोगुण नहीं है उधर, ऐसे बताते हैं। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, हाँ भगवान का अभी वर्णन आ रहा है इधर। श्यामावदाता शतपत्र लोचनाः पिशंगवस्त्राः सुरुच सुपेशशः सर्वे चतुर्बाहवन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः। भगवान के रंग क्या है, नीलमणि के बराबर उनके शरीर बहुत खूबसूरत है, और पद्म के पत्ता, पद्म के जो पंखुड़ियां होते हैं उसके बराबर भगवान के आंखें दिख रहे हैं, बहुत सुंदर कमल नयन है भगवान, और पीतांबर के वस्त्र पहने हैं। इस तरह उनके शरीर का वर्णन बताया जा रहा है। उधर सब लोग चतुर्भुज वाले लोग हैं, पढ़िए।
जो वैकुंठ जगत के निवासी हैं उनका यहाँ वर्णन है कि वो एक नीले रंग का उनका एक आवरण रहता है, उनकी आंखें कमल के पत के कमल के फूल जैसे हैं, उनका उनके जो वस्त्र हैं वो पीले कलर के हैं, और उनका जो शरीर की कांति है वो बहुत ही आकर्षक है। वो एक नौजवान के उम्र के हैं हमेशा, उनके पास चार हाथे हैं और वो हमेशा सुसज्जित आभूषणों से, मणियों से और अलग अलग तरह के आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं, और वो हमेशा उनकी कांति बहुत ही सबको आकर्षित करती है उनकी कांति।
तो देखने में वर्णन तो विष्णु जैसे वर्णन है उनका भी, विष्णु दूतों का भी है। भगवान और विष्णु दूत दोनों का रूप एक समान दिखता है, दोनों का चतुर्भुज वाले हैं और कपड़े भी एक समान पहने हैं, लेकिन फर्क क्या है, भगवान स्वामी हैं और ये सब उनके भक्त हैं, और भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है, जो श्रीवत्स चिन्ह का मतलब लक्ष्मी जी का निवास स्थान है उनके हृदय में, और कौस्तुभ मणि है भगवान के पास, और भगवान बड़े पराक्रमशाली शक्तिशाली हैं, और बाकी सब भक्त उनको उनके सेवक के रूप में, किंकर के रूप में सेवा करते हैं। प्रवाल वैडूर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिनः।
उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं, जैसे कि डायमंड और कोरल के जैसे हैं, और
हिंदी में क्या बोलते हैं कोरल को, क्या बोलते हैं कोरल,
मूंगा
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 मूंगा बोलते हैं उसको, ठीक है। वो एकदम डार्क होता है वो, कोरल। देखिए पहले बताया गया कुछ कुछ विष्णुदूत नीले रंग के हैं, लेकिन इधर श्याम वर्ण के, इधर बताया गया कोरल एंड डायमंड, इसका मतलब है और डार्कर कलर, मोर डार्क ब्लू। हाँ,
उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं, कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं।
हाँ, इधर प्रभु जी बताते हैं, ये भी पढ़िए है, तात्पर्य है।
कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य मणि विशेषतः भगवान के निमित्त हैं, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है।
उसमें स्पेशल कैटेगरी है वो। हाँ, पढ़िए और एक श्लोक पढ़िए अनुवाद।
सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं, ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो।
देखिये वैकुंठ के स्त्रियों को बिजली से तुलना किया है, वो चमक रही है, और भगवान के भक्तों को बादलों से तुलना किया है। जैसे आसमान में आप बादल देखते हो, वो नीले रंग का बादल है और उसमें बिजली चमकता है उसमें, इस तरह वैकुंठवासियों में स्त्री और पुरुष दोनों को कौन कैसे वो दिख रहे थे, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं उसको देखकर। यह तो वर्णन उनके लिए किया जा रहा है जो एकदम खूबसूरत हैं, जिनमें कुछ दोष ही नहीं है। श्री यत्रुपिंजुर्गा पादयो करोति मानं बहुधा विभूति भी प्रेंकम श्रिताया कुसुमा करानुगैर विगीयमाना प्रियकर्म गायति। बोले,
दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे ना केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं।
इसमें आश्चर्य की बात क्या है, लक्ष्मी जी अगर एक झूले में बैठकर झूल भी रही हो, झूलते झूलते भगवान का नाम गाती है वो। कभी कभी हम लोग अगर झूला में झूलते हैं तो अपने सिर्फ हम अपने सुख के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी इधर बताया जा रहा है कि भगवान के गुणगान करती रहती है हमेशा, सेवा करते समय भी, जैसे तुलसी का हार बनाती है, कुछ पकवान बनाती है, जो भी करती है ऐसे अपने सहेलियों के साथ वो गाती रहती है भगवान की गुणगान। ददर्श तत्रा किल सात्पताम पतिम श्रियपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंद नंद प्रबलार्हणादिभि स्वपार्षदाग्रै परिसेवितं विभुम। देखिए ददर्श, उस समय भगवान विष्णु अभी दर्शन देते हैं, अभी तक वैकुंठ वासियों की वर्णन हुआ, वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियों की वर्णन हुआ, उसके आगे लक्ष्मी जी की वर्णन हुआ, अभी विष्णु की वर्णन आ रहा है अभी। ददर्श तत्र अखिल सात्वताम पतिम का मतलब सब सब सारे भक्तों के स्वामी, श्रेय पतिम वो लक्ष्मी के भी पति हैं, यज्ञ पतिम यज्ञ कुंड जो होता है वो विष्णु के मुख है, या यज्ञ कुंड में निकलने वाले जो आग है वो विष्णु के मुख की जिह्वा है, ऐसे बताया गया, इसलिए हम उसमें आहुति डालते हैं, तो इसलिए वो यज्ञ पति है, यज्ञ पुरुष। जगत पतिम सारे ब्रह्मांडों के जगत के वो भगवान स्वामी है, और सुनंद नंद प्रबल अर्घण आदि भी के मतलब और भी अनेक उनके सेवक हैं, स्वपार्षद आग्रह अपने स्वपार्षदों के साथ परिसेवितम विभुम वो सब सेवा कर रहे हैं, कोई झंडा पकड़ा, कोई छतरी पकड़ा हुआ है उनके लिए, कोई चामर डुला रहा है, कोई कोई उनके मार्ग में फूल डाल रहा है, कोई कोई उनकी भगवान की खुशी के लिए गा रहा है, कोई कोई आरती उतार रहा है, ऐसे अलग अलग सेवक विविध सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भगवान के साथ वो अकेले नहीं है, भगवान उनके साथ सब पार्षद हैं। प्रभा जी तो उदाहरण दे रहे हैं कि कभी भी राजा अकेले नहीं जाएगा सड़क में, राजा जाएगा तो उसके साथ ब्राह्मण लोग जाएंगे जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अनेक घोड़े घोड़े भी जाएंगे, हाथी भी जाएंगे, रथ भी जाएंगे, अनेक सैनिक भी जाएंगे साथ में, इस तरह अपने मिनिस्टर लोग अपने सेक्रेटरी सबको साथ में लेकर जाते हैं ना राजा, ऐसे ही भगवान भी अपने सब शक्तियों को साथ में लेके हुए इधर उधर दिखाई देते हैं, भगवान उधर भगवत धाम है ऐसे चलते हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नः सारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। देखिए भृत्य का मतलब है भगवान के सेवक, भगवान के मुख के मुखमंडल के बारे में वर्णन है इधर। दृगासवम का मतलब है भगवान के मुखमंडल से ये इतने खूबसूरत है जैसे मधु के बराबर खूबसूरत है, जब वो मुस्कुराते हैं प्रसन्न हास, और अरुणलोचन है जगन्नाथ, आप देखेंगे जगन्नाथ के शिव विग्रह को देखेंगे आप, उनकी आंखों के बाहर एक लालिमा है, एक लाल, उससे क्या पता चलता है भक्तों की प्रेम प्रकट करते समय वो लाल सर्कल आता है जगन्नाथ की आंखों में ऐसे। तो अरुण का मतलब सूर्य, तो प्रसन्न हास अरुण लोचन आननम, उसका मतलब भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं, उनके आंखें सूर्य के सुबह के सूर्य का किरण जो है उसके समान चमक रहे हैं। किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम, मुकुट है, कुंडल है, चतुर्भुज है, पीतांशुकम वो भी पीतांबर पहने हैं, और वक्षसि लक्षितम श्रेया उनके वक्षस्थल में निवास करती है लक्ष्मी जी। इस तरह बताते हैं वृत्य प्रसाद अभिमुखम दृक आसवम, बता रहे हैं कि भगवान इस तरह की वर्णन जो किया जा रहा है वो भगवान भक्तों की ओर बहुत प्रेम से मुड़े थे वो। इसका मतलब है हर भक्त के साथ रहते समय भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं, भक्तों की सेवा को स्वीकारते हैं, प्रेम से बर्ताव करते हैं। इसके कारण सब भक्तों के हृदय भगवान के हृदय से जुड़ा हुआ है। इस तरह बहुत खूबसूरती के साथ दिखाई देते हैं भगवान विष्णु। हाँ पढ़िए, ये तात्पर्य
तात्पर्य ना। पद्म पुराण के उत्तर खंड में योगपीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं पूर्ण विवरण दिया हुआ है।
उधर सब एकदम वर्णन किया गया क्या क्या शक्तियां हैं उनके साथ, जैसे नीला शक्ति, भू शक्ति, ह्री, ऐसे अलग अलग अनेक शक्तियां हैं जो भगवान को सलाम मारकर सेवा करती है। अनेक लक्ष्मियां विविध तरह की सेवा करती है वो।
उस योगपीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहां पर ऋग, साम, यजु तथा अथर्व ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित हैं। चंड आदि 16 शक्तियां वहां विद्यमान हैं। चंड तथा कुमुद प्रथम 2 द्वारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय हैं।
ऐसे 7 द्वार हैं, सिर्फ 3 बताया गया इधर। ऐसे हरेक द्वार में 2-2 द्वारपाल खड़े हैं, उनका नाम भी बताया जा रहा है।
कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी हैं। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपर्युक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है।
देखिए, आपको एक शंका होगा आपके मन में, भगवान इतने शक्तिशाली हैं, पराक्रमशाली हैं, उनको द्वारपाल की क्या जरूरत है? हम द्वारपाल रखते हैं सुरक्षा के लिए, भगवान के लिए क्या सुरक्षा की जरूरत है? वैसे तो देखा जाए तो वैकुंठ में दरवाजा का भी जरूरत नहीं है। कौन है भगवान के विरुद्ध कौन चल सकता है? वो तो परम सत्य है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान के वैकुंठ में एक दरवाजा हो और हम भी उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहे हैं। ऐसे भगवान के भक्त प्रेम के वश में आकर ऐसे सोचते हैं। जैसे देवकी वसुदेव ने जब भगवान कृष्ण को जन्म दिया तब कृष्ण की योजना नहीं था हमें मथुरा छोड़कर वृंदावन जाना। वो किसकी आइडिया था? देवकी की उपाय थी। देवकी ने उनको बोला, देखिए आप अवतरित होते ही आपका शरीर चमक रहा है नीलमणि जैसे, अभी सारे कारागर में रोशनी छा गया है। अगर कम से के कारागर में रहने वाले कुछ सैनिक जाकर बता देंगे कंस को, तुरंत कंस आ जाएगा, क्रूर कंस आकर आपको वध करेगा। तो भगवान ने बोला, अरे मुझे कौन वध कर सकता है? अगर वो आएगा तो खुद ही उसको मैं वध कर दूंगा। लेकिन देवकी को विश्वास नहीं बैठा, आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप उनको कैसे वध करोगे? आप अभी आप अपने कांति को, आभा को आप छुपा लो, कहीं हम कारागर के अंदर ही आपको छुपा देते हैं कहीं, ताकि कंस को पता नहीं चलेगा कि आप जन्म लिए हो। इस तरह अनेक अच्छे अच्छे बातचीत होते हैं देवकी और कृष्ण के बीच में। बाद में भगवान देखते हैं कि दोनों देवकी वसुदेव बहुत डर से पीड़ित हैं भगवान की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान बोलते हैं ठीक है मुझे अभी लेके जाओ नंद गोकुलम में लेके जाओ। उसके बाद उनको लेके जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त लोग उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, भगवान की भक्तों की इच्छा। लेकिन भगवद्धाम में उनकी किसी भी तरह का सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर उधर दरवाजा हो, दरवाजा भी एक तरह का डेकोरेशन है बस वैकुंठ के लिए। अध्यर्हणीया सनमास्तितं परम प्रतम चतु षोडश पंच शक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरित्र चाध्रुवैः स्वयेव धामन रममाणमीश्वरं।
भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे।
अपने भक्तों के साथ भगवान आनंद लेते हैं। देखिए, इस दुनिया में भी देखा जाता है, अगर कोई पिता है, जरूर उनकी पत्नी होती है और उनके बच्चे होते हैं, अपने परिवार सहित कोई भी इंसान आनंद लूटना चाहता है ना। जैसे अगर कोई पिताजी मार्केट से कुछ जूस लेके आते हैं तो पत्नी के लिए भी लाते हैं, बच्चों के लिए भी लाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े जार में लेके जाकर खुद ही पीते हैं वो, अपने आनंद को वो क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं पत्नी को बच्चे को। इसी तरह भगवान भी अपने आप को विस्तृत किया है, जैसे लक्ष्मी के रूप में और जीवों के रूप में, हम सब जैसे जीवों के रूप में, तो सबके साथ उनको भी आनंद देते हैं भगवान और उनसे भी आनंद लेते हैं। इस तरह भगवान और उनके एक जैसे उनके अंश के रूप में कोटानुकोटि जीव हैं, सब विविध तरह के आनंद लूट रहे हैं उधर, ऐसे बताया जा रहा है इधर। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, उधर वैकुंठ में सब जीव हमेशा भगवान के इच्छा अनुसार चलते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा अभी। इधर उनके ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, इधर पढ़िए तात्पर्य।
भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं, विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं, और उनकी 4 भौतिक सर्जनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं, 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, 5 ज्ञानेन्द्रियां, नाक, कान, आंख, जीव तथा त्वचा, तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पाव, पेट, मल त्याग इंद्रियां, मूत्र तथा जनेन्द्रियां तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती हैं। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती हैं और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती हैं। लघु ऐश्वर्यों की संख्या 8 है, अस्थाई प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धि।
इस तरह भगवान के साथ क्या क्या शक्तियां हैं उसकी वर्णन किया गया इधर। ये सब उनके सेवक हैं सब। ठीक है, आगे जाकर बताते हैं, और एक श्लोक है। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनु प्रेम बराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते।
इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है।
इस तरह ब्रह्मा जी को दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की दर्शन प्राप्त हुआ इसे विष्णु की। और एक श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, इधर श्लोक पढ़ लेंगे। तम प्रेयमानं समुपस्थितं कविं
तम प्रेयमानं
प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बभाष ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन।
भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया।
देखिए विष्णु जो होते हैं गर्भदक्ष विष्णु, उनके नाभि से एक कमल उगता है, उस कमल के अंदर कोटाने कोटि चमकने वाले जुगनू जैसे कोटाने कोटि जीव होते हैं, सब चमक रहे हैं जैसे रत्नों जैसे चमक रहे हैं, लेकिन उनमें से श्रेष्ठतम जीव जो है उसको ब्रह्मा के रूप में भगवान स्वीकारते हैं, वो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा को अपने पुत्र बना लेते हैं भगवान, बोलते हैं कि बाकी सब बच्चों को संभालने के लिए मुझे एक सबसे वरिष्ठ बच्चे की जरूरत है, तो ब्रह्मा को अपने पुत्र बनाकर उनको भगवान उपदेश देकर बोलते हैं कि बाकी सब जीवों को तुम संभालो, हाँ उनके लिए 14 भुवन बनाओ जो जैसे घर बांधने के बराबर है, उसके बाद हरेक को 84 लाख योनियों में डालो, तो उसके मतलब है उनको अलग अलग शरीर प्रदान किया जाता है, जो सत्वगुणी है उनको ऊपर भेजो, तमोगुणी है उनको नीचे भेजो, जो रजोगुणी है उनको भूलोक में रखो भूमि में, इस तरह भगवान ब्रह्मा जी को अलग अलग आदेश देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, ब्रह्मा जी तपस्या करके भगवान के महावैकुंठ का दर्शन करके, अभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान उनके हाथों के हाथ मिला रहे हैं और हैंडशेक हुशुक हैंड्स देखा गया इधर, भगवान मुस्कुरा रहे थे ब्रह्मा को देखकर और हैंडशेक कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सारे दुनिया में ब्रह्मा जी के साथ जो भगवान ने हाथ मिलाया वही फर्स्ट हैंडशेक है सारे ब्रह्मांड में, उसके बाद कोई भी मैनेजर उसके अंडर में कोई अच्छा काम करता तो उसको हैंडशेक करते हैं, लेकिन पहला हैंडशेक किसने किया, ब्रह्मा ने किया, भगवान ने किया ब्रह्मा को, उसका मतलब भगवान ने अप्रिसिएशन दिया उनको, उनको प्रशंसा की उनकी तपस्या को देकर। इस तरह इस अध्याय में अभी तक हमने पढ़ा भगवत धाम की वर्णन पढ़ा हमने, अभी भगवान का बोलना चालू हो जाता है इधर से, ये दूसरे अध्याय, लेकिन अभी हम लोग प्रवेश करेंगे तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय में, उधर 7वां 8वां श्लोक है, ओके तीसरा श्लोक है ले लीजिए 3:15 नो यू रीड द ट्रांसलेशन ऑफ 1 and 2 प्रभु 1, 2 देन 3rd अनवर्ड्स विल रिसाइट 3:15:1 ट्रांसलेशन
श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दित्ति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे, अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था।
हाँ देखिए, दित्ति का 2 समस्या था, एक क्या था, उनके पति कश्यप ने बोला था कि तुम संध्या काल में संभव करने की इच्छा किया तुमने, इसलिए तुम्हारे योनि में 2 बड़े असुर आकर जन्म लेने वाले हैं, लेकिन क्योंकि तुमने पश्चाताप किया इसके कारण भगवान विष्णु उनको मारेंगे बाद में, और विष्णु के दर्शन करके वो मुक्ति पाएंगे, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद भी दी थी। अभी दित्ति ने सोचा कि अगर मैं गर्भवती हूं अभी बच्चों को जन्म दूंगी तो 2 समस्या है उसमें, ये दोनों बच्चे कौन है, दोनों बच्चे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप, बाकी सब जीवों को क्लेश देने वाले हैं, वो एक समस्या है, और दूसरा है उनको भगवान विष्णु आकर मार देंगे तो उनको बच्चों को बच्चे मारे जाएंगे वो भी दुख है, साथ साथ ही बच्चे दूसरों को दुख देंगे वो भी दुख है, तो उन्होंने सोचा अच्छा अंदर ही अंदर रखो, ऐसे ही ऐसे 100 साल के लिए रखा था उन्होंने अंदर ही अपने गर्भ में। उसके आगे क्या हुआ, लोके तेना हता लोके लोकपाला हतौ जसह निवेदयन् विश्वसृजे द्वांतव्यतिकरं दिशां।
दिति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा।
यही मैं आपको बोल रहा था पहले। देवा ऊचुः तमयेतद् विभोवेथ संविघ्नायद्वयं वृषम् नाह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्ट वर्त्मनः।
भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है।
हाँ, ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जब आपका रात आता है, बड़ा प्रलय होता है, लेकिन आपको कुछ डर नहीं है प्रलय से। आपका दिन होता है, रात होता है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जनाः भूत ग्राम से एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशपार्थ। इधर भगवान बताते हैं 1000 साल ब्रह्मा का एक दिन है, ये बताते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। और रात जब आता है सब प्रलय काल में, सब जीव मिट मिट जाते हैं, सब ब्रह्मांड के पाताल लोक से लेकर जन लोक तक पानी भर जाता है, सब जीव मिट जाते हैं उसमें। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो सत्यलोक में रहते हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता आपके ऊपर, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं कि आप चतुर्मुख वाले हो और भगवान के सुपुत्र हो, सब जानते हो, आप सर्वप्रथम भगवान ने आपको जन्म दिया, और ऐसा कुछ चीज नहीं कि आप कुछ जानते नहीं हो। तो इधर जो हम लोग दुख से पीड़ित हैं ये दुआ से, आप हमको बताओ ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देव देव जगत धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम परेशाम त्वम भूतानामसि भाववित।
हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं।
हाँ, ये ब्रह्मा जी की प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, क्योंकि आप सब देवताओं के नेता हो आप, अगर हमको कुछ समस्या हो गया इस ब्रह्मांड में, हम आपके पास आते हैं और आप क्या करते हैं, हमको लेके जाते हैं दुग्ध सागर में, जिधर भगवान विष्णु लेटे हैं उधर श्वेत द्वीप में, तो आपको ही हम लोग में मिलते हैं, इसलिए अभी भी ये समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ उपाय नहीं, तो आप ही मदद करो हमको, ऐसे देवता लोग प्रार्थना करते हैं उनको। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदम्बुपेयुषे विहित गुण भेदाय नमस्ते नमस्ते व्यक्त योनये।
हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथककृत रजोगुण स्वीकार किया है, आप बहिरंग शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत है, से उत्पन्न है, आपको नमस्कार।
ये क्यों बोल रहे हैं, आप सृष्टि के देवता हैं, अभी तो संहार होने जा रहा है, इसलिए अगर सृष्टि को संभालना हो तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए उनको याद दिला रहे हैं कि आप सृष्टि के लिए आए हो, आपने सृष्टि भी किया है, लेकिन लग रहा है कि प्रलय काल आकर अभी सब मिट जाएगा, अभी इतना बड़ा खतरा है हमारे सामने खड़ा हो गया, क्या है आप थोड़ा बताओ हमको, ऐसे उनको पूछ रहे हैं। ऐसे अनेक श्लोकों में बोलते हैं, तो आगे जाकर अभी ब्रह्मा जी बोलने वाले हैं, अभी ब्रह्मा जी क्या बोला सुन लेते हैं। ये सब उनकी गुणगान है, ब्रह्मा जी की गुणगान कर रहे हैं। हाँ, इधर ये श्लोक 9th श्लोक, सत्वं विदत्स्व सत्वं विदत्स्व भूमं सत्वं विदत्स्व शंभूमं तमसालुप्त कर्मणाम् अदब्रदयया दृष्ट्या आपन्नान अर्घशिक्षितुम।
देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है।
येष देवदितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निर् इवैधसि।
जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है।
मैत्रेय उवाच स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान् प्रीणन रुचरया गिरा।
श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया।
ब्रह्मोवाच मानसामे सुता युष्मत् पूर्वजासनकादयः चेरु चेरुर्विहाय सालोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः।
ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों में होकर यात्रा करते हैं।
अभी देखिए, ये लोग पूछ रहे हैं दुआ के बारे में, लेकिन ब्रह्मा बोल रहे हैं चतुष कुमार वैकुंठ की ओर जा रहे हैं ना, उसके वो कथा बता रहे हैं। तो देवताओं को आश्चर्य होने वाला है कि क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी है? तयेकदा भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मनः ययोर्वैकुंठ निलयम् सर्वलोक नमस्कृतम्।
इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं।
देखिए, ये दूसरे स्कंद में अभी पढ़ा हमने, नवें अध्याय में, अभी तीसरे स्कंद के पंद्रहवें अध्याय में वर्णन आ रहा है। अभी आप विष्णु पुराण पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, नरसिंह पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, ये सब पुराणों में अगर विष्णु का वर्णन आता है तो विष्णु का रंग क्या होता है? नील वर्ण, श्याम वर्ण होता है। उनके कितने हाथ होते हैं? चार हाथ होते हैं। उनके क्या मणि होता है उनके वक्षस्थल में? कौस्तुभ मणि होता है। और उनका कुंडल का क्या आकार है? मकर कुंडल। और विट्ठल हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, सबके लिए मकर कुंडल है, ऐसे बोला गया। और मुकुट पहनते हैं, और उनके धोती का रंग क्या है? तो ये आप शास्त्र में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ो वर्णन एक ही वर्णन आएगा आपको, क्योंकि इस तरह आप आपको पुष्टि मिलेगा। आप देख सकते हैं कि शास्त्र के कोने कोने में किसी भी पुराणों में पढ़िए, वर्णन एक ही समान किया गया है भगवान के बारे में। इस तरह इधर भी वैकुंठ का वर्णन ऐसे ही, जो हमने पहले पढ़ा दूसरे स्कंद में, ऐसे ही वर्णन है इधर भी। तात्पर्य पढ़िए, इंपॉर्टेंट।
भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है, सर्वोच्च लोक से होकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतएव वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं।
भौतिक दुनिया को अनित्यम असुखम लोकम ऐसे भगवान बताते हैं, यह अनित्य लोक है और असुखम है, दुकालयम आशाश्वतम बोलते हैं भगवान। लेकिन भगवत धाम के बारे में बताया गया वही कुंठ का मतलब उधर किसी भी तरह का दुख नहीं है उधर, ये पहली बात बताया जा रहा है। इधर देखिए गांव के लोग शहर में आते हैं क्योंकि शहर में सुविधा ज्यादा है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा तनखा है और अच्छा हम जी सकते हैं और भोग कर सकते हैं सोचकर लोग आते हैं। और ये शहर के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के लोग और कुछ लोक में जाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह इंसान अपने जीवन को और खुशी कैसे बनाया जाए इसके खोज में है। प्रभु जी बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रह में क्यों जाना चाहते हैं, ये दूसरे ग्रह में जाने की आदत है जीव में क्योंकि वो अपने भगवान के धाम को छोड़कर आया है, इधर दुखित है इसलिए तो सुख के तलाश में अलग अलग ग्रह में जाकर देख रहे हैं कि इधर मिलेगा क्या, चंद्रमा में हम सुखी होंगे नहीं तो मार्स में सुखी होंगे, ऐसे ये लोग सुख की तलाश में अलग अलग ग्रह जाकर ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं। तो गांव में कभी कभी इंसान को लगता है कि अरे क्या है सुविधा है गांव में, शहर अच्छा है। हमने एक गांव और गांव का और शहर का चूहा के बारे में एक कहानी सुना। एक शहर का चूहा था, उसने गांव के चूहे को बोला कि अरे तुम्हारे गांव में देखो तुम क्या सुखा फुका खाते हो तुम, शहर में हमको क्या क्या मिलता तुमको मालूम नहीं, तुमने देखा ही नहीं हमारे दुनिया को, आओ हमारे साथ हम लेके जाते हैं। उसका रिश्तेदार था वो लेके गया शहर में, पुणे में लेके आया उसको। ऐसे एक बहुत बड़े जमींदार जमींदार के घर में रहता था वो पुणे शहर में, उसके वो बड़े धनी राइस खानदान था, वो बड़ा टेबल था उसका, वो टेबल में विविध व्यंजन पकवान बनाकर रखे गए थे, सेवई स्वीट था जैसे गुलाब जामुन था, रसगुल्ला था, पूरन पोली था, पुलाव था, कढ़ी था, ऐसे अनेक चीज। तो गांव का चूहा ने देखा कि अरे अभी हमने देखा भी नहीं इतने आइटम, क्या क्या आइटम बनाकर रखा गया है। तो हमारे शहर वाला चूहा ने बोला कि देखो इसलिए मैंने तुमको बोला कि तुम गांव काले करके इधर आ जाओ हमारे साथ रहो। ऐसे दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक एक आवाज सुनाई दे रहा फाट करके, तुरंत गांव का चूहा डर गया आवाज सुनकर, ऐसे मुड़कर देख रहा था क्या आवाज है, मुड़कर देखा वो शहर का जो चूहा था वो है ही नहीं था उधर, पता नहीं वो खुद मारकर भाग गया अंदर भाग गया। तो गांव का चूहा धीरे धीरे वो भी उतर गया नीचे, वो भी छिद्रे के अंदर चला गया, देखा अंदर जाकर दोनों श्वास ले रहे थे। तो गांव के चूहे ने पूछा कि अरे तुम हमको छोड़कर भाग गए, ऐसे कैसे भाग, नहीं तो मेहमान हो तुम्हारा, मेहमान को छोड़कर तुम भागे क्या हुआ। वो बोला कभी कभी थोड़ा छोटा समस्या होता है ऐसे, वो जो वॉचमैन देखता है कि चूहा आगे टेबल में ऐसे लाठी लेकर वो मारता है। तो गांव के चूहे ने पूछा कि अगर लाठी हमारे ऊपर गिर गया तो, वो बोला गिर गया तो क्या है मरने का बस। तो गांव का जो बोला अरे अच्छा हम गांव चले जाते हैं वापस, क्योंकि गांव में खेती में इतना मिलता है हमको खाने के लिए, मारने वाले कोई नहीं है, बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, बोला उसने। लेकिन ये कहानी आपको क्यों बोला, आपको हर इंसान भोग चाहता है लेकिन तकलीफ नहीं चाहिए उसको, भोग बहुत करने की इच्छा है। तो इधर भी बताया जा रहा है कि इस दुनिया में जो भी हम करते हैं उसके लिए भय है, जैसे भोगे रोग भयम बोला गया, अगर ज्यादा कोई खा लेता है तो रोग होता है, जैसे रसगुल्ला है एक दो का वो बहुत अच्छा लगता है, लगता कि अभी एक दर्जन खा लो तो डिसेंट्री हो जाता है उसका, भोगे रोग भयम। अगर कोई कुले अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा है जैसे अजामिल चुति भयम उसका पतन हो गया हो जाएगा करके डर है उसको। माने दैन्य भयम अगर कोई धनी बन गया बड़ा गाड़ी है बड़ा का बड़ा मकान है उसको डर क्या है। माने दैन्य भयम अचानक कुछ शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हो जाता है तो ऊपर से नीचे आ जाता है वो, उसके मान चला जाता है, लोग उसकी निंदा करेंगे वो डर है उसको। ऐसे इस दुनिया में बताया गया है कि काये कृतांतात भयम अगर किसी के पास शरीर है और एकदम तंदुरुस्त रखना चाहता है शरीर को, कुछ लोग जिम में जाते हैं कुछ लोग योगासन करते हैं शरीर को अच्छा अच्छा रखते हैं, लेकिन अचानक कुछ व्याधि आ जाता है शरीर में, जो डरते हैं बहुत है, तो ये व्याधि आकर शरीर को गिरा देता है। जैसे कभी पेड़ में कुछ व्याधि आता है, पूरा पेड़ को ही खत्म कर देता है व्याधि, इस तरह है। तो इस दुनिया में जो भी हो आपके पास, अगर कोई खूबसूरत है उसको भी डर है। एक मैरिलिन मनरो नाम के एक एक्ट्रेस थी, पहली बार उन्होंने एक सफेद बाल को देखा उनके सर में, अभी तक देखा नहीं था, तो उसी तत्क्षण वो शरीर त्याग दिया उन्होंने। सोचा कि अभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बोलेंगे कि बूढ़ी हो गई है। कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। अगर जुर्रियां आ जाते हैं हमारे चेहरे में तो हमको बुरा लगता है। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में कोई भी सदा नित्य निरंतर काल के लिए सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कभी कभी कोई कोई माता जी स्त्री अगर उसका 60-70 भी हो जाए, उनकी इच्छा होगा कि हम और अभी भी हम तरुण अवस्था के रूप में दिखाई दे। इस तरह कोई व्यक्ति पुरुष उसका 60-70 हो गया तो उसको लगता है कि कोई ना सोचे कि हम कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं घर में, कोई हमको बुरा भला ना बोले, ऐसे डर होता है उनको। क्योंकि हर एक इंसान को इच्छा होता है, इसलिए बोला गया है कि डोंट आस्क द सैलरी ऑफ अ मैन एंड एज ऑफ वुमन, इसे बोला गया है ना, स्त्री की वयस मत पूछो, पुरुष की वेतन मत पूछो। क्योंकि इस दुनिया में डर होता है सबको कोई भी। तो इधर बताते हैं कि ये इस तरह के दुखों का दुनिया है। जो भी हो आपके पास, ये समय की बात है, 20-30 साल में एक एक करके निकल जाएगा सब इस दुनिया में। हाँ, तो हम अपने जीवन में ये बात देखना चाहिए कि ये मिटने वाले शरीर जो है इसमें हम आसक्त ना हो जाए, हम भगवान भगवत धाम की ओर ध्यान दें। यही ब्रह्मा जी का भी इच्छा था। देखिए, ब्रह्मा जी के पास ये लोगों ने आकर एक समस्या सामने रखा, वो समस्या था भौतिक समस्या, लेकिन ब्रह्मा जी दे रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान। क्यों? क्योंकि भौतिक समस्या को भौतिक तरीके से सुलझाना नहीं चाहिए। भौतिक समस्या जब आता है तभी भगवान का आश्रय लेना चाहिए, ये ब्रह्मा जी सिखाना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवान के पास अभी भगवत धाम जाना तो दूर की बात है, अभी हम इसको सुलझाएंगे। इस तरह सुलझाने में लोग डूब जाते हैं इस दुनिया में, एक के बाद एक के बाद एक। तो एक प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी बोले इस दुनिया में पैसा इकट्ठा करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी बोले उसको बचा कर रखना और भी कठिन है, उसके बाद बुढ़ा होने के बाद उसको बच्चों को एक करके बंटवारा करके देना उससे भी ज्यादा कठिन है, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कमाते समय बहुत लोग आपके साथ स्पर्धा करते हैं, आपका कंपनी हो, काम धंधा हो, बिजनेस हो, कुछ भी आप बिजनेस चालू करो, आप देखेंगे दूसरा भी व्यक्ति वही बिजनेस कर रहा है उसी शहर में, आपका कॉम्पिटिटर है, उसको स्पर्धा करके कम्पीट करना है। अनेक मोबाइल कंपनी पहला चीज लोगों को सिखाते हैं कि दूसरे मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सिखाएंगे उनको, ताकि इनके मोबाइल को ऊपर उठाने के लिए। ये स्पर्धा का दुनिया, हमने बोला आपको, आप देख सकते हैं स्पर्धा के बिना इंसान कैसे जी सकता है इधर। उसके बाद पैसा अर्जित करने के बाद उसको बचा कर रखना कठिन है। घर वाले बोलेंगे इतना पैसा बचाने की क्या जरूरत है, बहुत कुछ खर्चा पड़ा है, ये करना है वो करना है, पैसा खर्चा हो जाता है इसे। कुछ लोगों का हाथ जैसे टोकरी में पानी डालते जब क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। सर कुछ लोग पैसा बचा कर नहीं रख पाएंगे, खत्म कर देते हैं। अगर बचा भी रखा आपने, वृद्धावस्था में बंटवारा करते समय परिवार में कुरुक्षेत्र मच जाता है, जगह जाता है इस दुनिया में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत धाम भौतिक दुनिया से एकदम भिन्न है। अभी पढ़ने वाले हैं भगवत धाम के बारे में, इसलिए इधर बताते हैं। इधर शुरुआत में वो लोग वैकुंठ धाम में आ पहुंचे। कौन? सतीश कुमार। अभी क्या क्या देखा वो लोग उधर, ब्रह्मा जी वर्णन करने वाले हैं। वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। बता रहे हैं कि वसंती मतलब वसन करते हैं, यत्र पुरुषा उस वैकुंठ में जो पुरुष वसन करते हैं, सर्वे वैकुंठ मूर्ते है, वो सबका सच्चिदानंद विग्रह है, स्वरूप है। कुछ पंचमहाभूत का शरीर नहीं है, उनका सुंदर स्वरूप है, लेकिन स्वरूप किससे बनाया हुआ है? सच्चिदानंद से बनाया हुआ। और दूसरा लक्षण बता रहे हैं, ये अनिमित्त निमित्त है ना, का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते वो, सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए धर्म को अपनाते हैं उधर। अनुवाद पढ़िए।
वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं।
देखिए, गरुड़ हो, हनुमान हो, जैसे विष्णुदूत हो, ऐसे रामायण में पढ़ते हैं हम लक्ष्मण के बारे में, भरत के बारे में, सीता के बारे में, जटायु के बारे में, विभीषण के बारे में। तो इन चरित्रों को पढ़कर हम लोग समझ लेना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त कैसे त्याग भावना के साथ भगवान की सेवा करते हैं। एक अनंताचार्य की एक कथा है, हमने पढ़ा रामानुचार्य की कथाओं में। एक बार अनंताचार्य के पास आकर एक वैष्णव ने एक प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है। तो रामानुचार्य ने इस व्यक्ति को भेजा था उनके पास। तो उन्होंने बोला उन्होंने कि मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन अभी नहीं, अभी देखो सब वैष्णव लोग पंक्ति में बैठे हैं, प्रसाद सर्विंग की टाइम है, तुम बकेट उठा लो, तुरंत प्रसाद परोसना चालू करो। तो प्रसाद परोसना चालू किया उसने, पहला पंक्ति हो गया, सब हाल धुलाया गया, दूसरा पंक्ति आकर बैठा, तो ये व्यक्ति आ पहुंचा इनके पास। इन्होंने बोला देखो दूसरा पंक्ति भर गया पूरा हाल, दूसरी बार सर्विंग करो। ऐसे चार बार इन्होंने प्रसाद परोसा, और पांचवा बार बहुत कम लोग बाकी थे जिन्होंने अभी तक प्रसाद नहीं खाया था, उनको बिठाया गया। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम बैठ जाओ, तो इन्होंने उनको भी प्रसाद परोसा, उसके बाद बैठा इन्होंने। वो प्रसाद होने के बाद आनंदाचार्य ने उनको बताया कि वैष्णव कैसे होता है। उन्होंने चार चीज बोला उनको, कोक्काई पोल इरुपान, कोड़ियाई पोल इरुपान, उप्पई पोल इरुपान, उन्नई पोल इरुपान, चार चीज बोला उन्होंने तमिल में, उसको मैं हिंदी में बोलता हूं। वैष्णव जो है वो क्या बोलते हैं, बगुला बोलते हैं, बगुला बगला बगुला 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 बकुला
बगुला
बगुला, करेक्ट। तो बगुला जैसा है वैष्णव, क्रेन नो क्रेन, करेक्ट। वैष्णव कोक्काई पोल इरुपान, कोड़ी मीन्स ये चिकन को क्या बोलते हैं, चिकन, हाँ मुर्गी, वैष्णव मुर्गी के बराबर है बोला। दूसरा तीसरा बोला वैष्णव नमक के बराबर है, और वैष्णव तुम्हारे बराबर है, ऐसे चार चीज बोला उन्होंने। तो पहले उन्होंने बताया, क्यों बताया उन्होंने बगुला का, बगुला जो है पानी में ऐसे खड़े रहता है, ऐसे मुंह को नीचे रखे रहता है, ऐसे देखता रहता है, ऐसे एक मूर्ति जैसे खड़ा रहता है वो, तो हिलता नहीं है, देखता कि छोटे छोटे अनेक मछली जाते हैं सबको छोड़ देता है वो, लेकिन बड़ा मछली जब आता है चक करके पकड़ लेता है उसको। इस तरह वैष्णव भी क्या करते हैं इस दुनिया में, वो दुनिया को शोधन करते हैं कि इस दुनिया में क्या करना चाहिए। इस दुनिया में धन है, धनम जनम सुंदरी, बहुत कुछ चीजें हैं, क्या स्वर्ग के राजा बनना है, क्या इंद्र बनना है, ब्रह्मा बनना है, इंद्र वरुण चंद्र वायु क्या बनना है उनको, नहीं तो क्या अमेरिका जाना है, पैसा बनाना है, क्या बड़ा कोटी बनाना है, बड़ा गाड़ी लेना है, क्या है, वो सब ढूंढ कर अंत में समझता है कि अरे ये सब प्रदान करने वाला एक ही व्यक्ति जो परम सत्य भगवान है। अगर भगवान प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया आपको, ये समझ कर क्या करता, भगवान को पकड़ लेता, भगवान के पद कमलों को। इसलिए उन्होंने बोला उसको बगुला जैसे, जो वो सबसे बड़ा बुद्धिमान बोला गया है, जय कृष्ण बजे सही बड़ा चतुर, सबसे चतुर है, क्योंकि उसको मालूम है कि कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं है, इसलिए कृष्ण के पास सब कुछ है तो समझ लेता है वो। ये पहला चीज है। दूसरा है मुर्गी के बराबर बोला, क्योंकि बड़ा मुर्गी नहीं, आपने छोटा मुर्गी देखा है जो एकदम छोटा होता है ऐसे करता हुआ, वो उसमें क्या करता है, कचरे के डब्बा जो रहता है उसके नीचे उसके निकट ऐसे ऐसे करता रहता है, देखा आपने, ऐसे करके उसमें से धान्य निकालता है। अगर आप देखेंगे आपको सिर्फ पत्थर ही दिखाई देगा, आपको पत्थर और मिट्टी दिखाई देगा आपको, उसमें से कैसे धान्य को निकालता है उसको ही पता। इस तरह वैष्णव सारग्राही होता है मुर्गी जैसे, वो क्या करता है इस भौतिक दुनिया में भी वो कुसंग को छोड़कर सत्संग को प्राप्त कर लेता है, भगवान संबंधित चीजों को ही लेता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है मुर्गी जैसे। तीसरा उन्होंने बोला उपाय पोलर पान, जो नमक जो होता है ना, अगर आपने भिंडी सब्जी बनाया उसमें अगर नमक कम गिर गया सब लोग चिल्लाएंगे, नमक नहीं है, क्यों नमक डाला नहीं तुमने, अच्छा नहीं लग रहा हमको, नमक लाओ बोलेंगे। अगर नमक सही ढंग से डाला तो लोग बोले अरे आज भिंडी का सब्जी एकदम बढ़िया। कोई नमक के बारे में प्रशंसा करने का लोग कोई नहीं है, कोई नहीं बोलेंगे आज भिंडी सब्जी में कितना अच्छा नमक डाला तुमने, कोई बोलेंगे ऐसे। इस तरह वैष्णव भी सेवा करता है लेकिन हमेशा पीछे रहता है, सामने आकर अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है वैष्णव। वैष्णव को इच्छा नहीं है कि हम कुछ इंप्रेस करें लोगों को, पीछे पीछे रहता हो नमक जैसे रहता हो। इस तरह से सब्जी में भी नमक पीछे रहता है, लोग हमेशा सब्जी का ही प्रशंसा करते हैं, नमक का कोई प्रशंसा नहीं करता। नमक की अनुपस्थिति में नमक को डांटते हैं लोग, ए नमक को बुलाओ क्यों नहीं लाए नमक, नमक को डांटते हैं ऐसे। तो चौथा बोला उन्होंने उन्ने पोले रूपान का मतलब क्या है, वैष्णव तुम्हारे जैसे बोला उन्होंने, क्यों, क्योंकि तुम आते ही तुमने प्रश्न पूछा मुझे, जवाब नहीं दिया मैंने, जवाब के बदले मैंने सेवा दिया तुमको, हा? लेकिन तुमने कुछ मेरे से कुपित नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, तुम सेवा में जुड़ गए, और बार बार लगाया मैंने तुमको सेवा में चार पांच बार, तुम तके नहीं। वैष्णव कभी तकता नहीं, वैष्णव सेवा में आनंद लेता है, तुम्हारे जैसे वैष्णव सेवा में इस तरह तुमने किया। इस तरह वैकुंठ में भी ऐसे ही लोग प्राप्त होते हैं जो सेवा करने में बड़ा आनंद है उनको, लेकिन सेवा लेने में आनंद नहीं है उनको, सबको सेवा करने की इच्छा है, बाकी सब वैष्णव की और भगवान की सेवा करने की इच्छा है, ये उनका ऐसे चरित्र है वैकुंठ लोग में। अनिमित्त निमित्त है ना, वो कुछ भोगना नहीं चाहते, अगर भोगना हो तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन सेवा करना तो सेवा करते हैं। देखिए इस दुनिया में भी देखा जाता है अनेक लोग आरएसएस में ज्वाइन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग सुबह उठ जाते हैं शाखा के लिए आते हैं, वो लोग एकदम सस्ते कपड़े पहनते हैं, देश के लिए बहुत करता है इंसान, आपने देखा होगा। आपने जो लोग अपने परिवार से पहचानते हैं परिवार के लिए त्यागते हैं, जो लोग देश से पहचानते हैं देश के लिए त्यागते हैं, इस तरह जो लोग अपने जाति पाति से पहचानते हैं वो जाति पाति के लिए त्यागते हैं अपने आप को, लेकिन जो समझता है कि मैं सब जीव भगवान के ही दास है, वो पेड़ के मूल में पानी डालता है, वो समझ लेता है कि भगवान की सेवा करने से सब जीव तुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये भगवान के भक्त वैकुंठ में सेवा देते हैं लेकिन इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं, भोग में उनको रुचि नहीं है। इसके एकदम विरुद्ध भौतिक दुनिया में सब लोग स्वार्थी होकर अपने भोग के पीछे ही पड़ते हैं। एक बार मैंने बच्चों को पूछा, अगर मैं तुमको चार बन दिया, एक बन में चर्री है और बाकी तीन बन में चर्री था पहले लेकिन चर्री कहीं तो गिर गया, उसके सिर्फ डिप्रेशन, आपने देखा कुछ बन में ऐसे ऐसे रहता है चर्री नहीं रहता है उसमें, तो मैंने पूछा कि तुम किस बन को लोगे, किस बन को दूसरों को दोगे, तो आंसर तो आप लोग जानते हैं है ना, क्या क्या करेगा कोई भी बच्चा, चेरी वाला रखेगा अपने पास, बाकी बच्चों को बाकी तीन देगा। लेकिन उस कार्यक्रम में जो बच्चा ये आया था उसने क्या बोला, मुझे इतना बढ़िया जवाब दिया उसने, मुझे बोला प्रभु जी मैं पहले बच्चों को बुलाऊंगा, पूछूंगा उनको आप में से कितने लोगों को चेरी पसंद है, उसमें से एक बच्चा हाथ उठाया, प्रभु जी मुझे चेरी पसंद है, बाकी दो बच्चे बोले हमको चेरी नहीं चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है वो दो बच्चों को दो बन दे दिया और ये बच्चे को ये चेरी काट कर तुम आधा मैं आधा लूंगा, ऐसे मिलूंगा, ऐसे बोला उसने। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, कितना बुद्धिमान है, कम से कम उसको जियो जीने दो ये आदत है, हम भी कहेंगे तुम भी खाओ ऐसे। इस तरह उसी लड़के को मैंने और एक प्रश्न पूछा, ट्रेन में आठ बच्चे घुसते हैं, सब लोग किधर बैठना चाहते हैं, विंडो से, तो मैंने उसको पूछा तुम किधर बैठोगे, वो बुद्धिमान था, उसने क्या बोला, प्रभु जी मैं पहले जाकर विंडो सीट में बैठूंगा, मैं बैठूंगा वो बैठेंगे, आधा घंटे के बाद मैं दूसरों को भी छोड़ूंगा बैठने के लिए, ऐसे बोला वो। तो मैंने बोला अरे ये तो सही बच्चा है, वैकुंठ जाने के लिए तैयार है ना, दूसरे के बारे में भी सोचता है ना। इस तरह आप देखेंगे भौतिक दुनिया में साधारणता देखा जाता है, लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी ऐसे सोचते हैं ऐसे। तो आगे जाकर बताते हैं, यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचर सत्वं विष्टव्य विरजम स्वानाम नो मृडयन वृषः।
वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कलमश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं।
करेक्ट। अभी भगवान का वर्णन आ रहा है अभी वैकुंठ में। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं काम दुघै द्रुमैः सर्वर्तुर सर्वर्तुर श्रीभिर् विब्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्।
उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वैकुंठ लोकों में भूमि वृक्ष फल फूल तथा गौएं हर वस्तु पूर्णतया आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में वृक्ष भूमि निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं और वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूप विहीनता निराकर्ता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोकों में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है किंतु उसका एक विशेष रूप रहता है। वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हैं, होते हुए भी सभी आध्यात्मिक हैं और उनमें कोई अंतर नहीं होता है।
सब सच्चिदानंद विग्रह हैं भगवत धाम में। पेड़ हो पौधे हो जमीन में चिंतामणि धूली है और फल है फूल है सब दिव्य है। देखिए इस दुनिया में सुबह फूल ऐसे खिल उठता है और शाम के समय मुरझाए फूल हो जाता है। फल भी ताजा तब ताजा होते हैं, पके होते हैं तभी खाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप खाया नहीं जब पका है तभी सड़ जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो सड़कर नीचे गिर जाता है इसे इस दुनिया में। इतना ही नहीं, इस दुनिया में पेड़ जो होते हैं वो आपको जो एक ही फल देता है। अगर केले के पेड़ के पास जाकर आप केला मांगो केला देगा, आप आम मांगो क्या देगा, वो केला ही देगा। वो उसका चेतना उतना वर्धन नहीं हुआ है कि आपको बाकी अलग अलग फल दे सकता है वो। लेकिन भगवत धाम में कल्प वृक्ष होते हैं, जो फल आप मांगेंगे वो देगा वो। अगर आपको आम चाहिए तो आम, केला चाहिए तो केला, पाइनएप्पल तो पाइनएप्पल, पेड़ एक ही है लेकिन अलग अलग फल देगा आपको। ऐसे फल देने के लिए वो सक्षम है भगवत धाम में ऐसे। तो मैं आज सत्र को इधर विराम दूंगा और कीर्तन करूंगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगले बार जब आएंगे हम 17 से लेकर 21वां तक पढ़ेंगे, 5 श्लोक हैं। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गोलक वृंदावन के बारे में भी वर्णन उसको भी जोड़ दूंगा उसके साथ, क्योंकि हम लोग वैकुंठ के बारे में वर्णन सुन रहे हैं। तो अगले सत्र में हम वैकुंठ और गोलक दोनों के बारे में हम चर्चा करके इस भगवत धाम के विषय को हम विराम देंगे और आगे जाएंगे। तो क्योंकि मैंने सोचा कि तेजी में अगर मैं पूरा करूंगा तो आगे आने वाले श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक हैं, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो हम अगले बार हम करेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.